الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی ایک زندگی بچپن کی اور پھر جوانی تک ایک اس امید سے گزرتی ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں گا. لڑکی جو ہے اس کو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ میری رخصتی ہوگی، میں اپنے گھر جاؤں گی، اور اس کے لیے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امانت ہے. گھر میں پلتی ہے، بڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے، پرائی چیز سمجھی جاتی ہے. اگلے گھر کے بارے میں سوچنا بچی چھوٹی عمر سے ہی شروع کر دیتی ہے، اور ماں باپ بھی اس بچی کو یہی سمجھ کر کہ یہ پرائے گھر جانے والی ہے اس کی تربیت کرتے ہیں. اسی طرح ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے، وہ بھی چھوٹی عمر سے ہی سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ گھر بسائے گا، اپنا گھر آباد کرے گا. اور ماں باپ بھی یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو بچے بڑے ہو جائیں گے ہم ان کی شادی کر دیں گے اور یہ اپنے گھروں میں خوش خوش آباد ہوں گے، ہمارا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے لیے وہ بچوں کو اچھا پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تاکہ ان کو زندگی میں اچھا کام کرنے کو ملے، اچھی جابز مل جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ان کو اچھے آداب بھی سکھانے ہیں. لڑکوں کو بھی اچھے آداب سکھانے ہوتے ہیں، کیونکہ جب اس کا گھر آباد ہوگا، پرائی لڑکی اس کے گھر آئے گی، اگر اس کو ادب ادابی نہیں ہوں گے تو یہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا؟ بات بات پہ غصہ آ گیا یا اپنے کام میں محنتی نہیں ہے یا اس کا اچھا پروفیشن نہیں ہے تو اچھی جگہ پہ رشتہ بھی نہیں ہوگا، اچھا جوڑ بھی نہیں بنے گا. اسی طرح لڑکی جو ہے اس کے بارے میں بھی ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی گھر گرستی کے کام بھی اس کو آنے چاہیے اور بڑوں کی عزت کرنا بھی آنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اس نے گھر آباد کرنا ہے. کل کو جس طرح ماں برداشت کرتی ہے پتہ نہیں سانس برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو بہرحال اس کو برداشت کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے. اب چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، بعض لوگ اسی وقت سے اس کا جہیز بھی تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بلا آخر گھر کی مالکن بننا ہے اور گھر کو اس نے چلانا ہے. ایک دن رخصت ہونا ہے اور اس رخصتی کا نام شادی ہے. گھر بار کو بھی چھوڑنا ہے، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑنا ہے، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑنا ہے، اور دوسری جگہ جانا پڑتا ہے. بعض اوقات بچیاں بیاہ کے دوسرے ملکوں میں بھی رخصت کر دی جاتی ہیں، دوسرے شہروں میں بھی رخصت کر دی جاتی ہیں. بہرحال ماں باپ کے گھر سے تو رخصت ہوتی ہیں. اب اس بچی کو اپنے گھر بار چھوڑنے کا غم بھی ہوتا ہے، مگر دل ہی دل میں اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے گی، اپنا گھر آباد کرے گی اور گھر والی بن جائے گی. تو ये जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो एक प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, एक और जिंदगी की तैयारी है, घर बनाने की तैयारी है। और जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होती है उसको उसी हिसाब से आगे वाले घर की खुशी होती है, उसका वो एंजॉय करता है। लड़के की अच्छी जॉब हो जाएगी, अच्छा कारोबार हो जाएगा, अच्छा प्रोफेशन होगा। माँ बाप को इत्मीनान होता है कि अब बकिया जिंदगी जो है इसकी खुशी खुशी वाली होगी। इसी तरह लड़की ने भी अगर अपने तमाम इलम और हुनर सीख लिए तो माँ बाप को तसल्ली होती है कि जब घर वाली बनेगी तो अपने घर को अच्छा चला लेगी। तो एक जिंदगी का एक हिस्सा है जिसमें बंदा तैयारी करता रहता है करता रहता है, इसलिए इसके बाद क्या जो हिस्सा है जिंदगी का उसमें इंजॉयबल लाइफ हो। और एक जिंदगी का वो हिस्सा है जो इंसान की इस जिंदगी के बाद शुरू होता है, वो भी जिंदगी का हिस्सा है। और उसके लिए दहेज की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन आमाल की जरूरत होती है जिससे मरने के बाद की जिंदगी खुशियों वाली बन जाती है। अगर इसी को हम कंपेयर करें इस अंदाज से कि एक बच्ची जब रुखसत की जाती है तो उसको डोली में बिठा कर पहले जमाने में भेजा जाता था, आजकल गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, अपने घर से रुखसत होती है। और मौत की डोली भी इसी तरह आजकल गाड़ियों में सवार करके कब्रिस्तान तक पहुंचा दी जाती है। पहली रुखसती में जो चीजें बनाई जाती हैं यानी जहेज वगैरह, उसको चंद लोग देखते हैं, और जब दूसरी रुखसती होती है उसका जहेज नेक आमाल है और इनको हशर के दिन सारी मखलूक देखती है। इंसान कामयाब होता है सबको तो दिखाता है कि देखो मैं कामयाब हो गया, तो उस दिन सब लोग देखेंगे इसको। दुल्हन के पास औरतों का जमघट्टा होता है, लेकिन जब दूसरी मर्तबा इंसान रुखसत होता है तो चाहे जो भी औरत हो कब्र में अकेली होती है। पहली मर्तबा जब रुखसती होती है तो ब्यूटी पार्लर पे जाकर उसको सजाया बनाया जाता है ताकि खामद को पसंद आ जाए। और जब दूसरी मर्तबा मौत के वक्त रुखसती होती है, इस वक्त की सजावट बनावट जो है वो दीनी मदारस में दीनी महाफिल में इस खूबसूरती को हासिल किया जाता है। दुल्हन को सजाने बनाने के लिए खूबसूरत लिबास पहनाया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वली बास तक्वा ज़ालिका खैरुन, कि आखिरत में जो तक्वे का लिबास है वो बेहतर है। वहां पर जिसके पास जितना ज्यादा तक्वा होगा वो खूबसूरत लिबास में सजा हुआ होगा। पहली रुखसती में माँ बाप से जुदाई आर्जी होती है, दुल्हन चली जाती है अपने घर को, लेकिन बाद में माँ बाप को मिलने के लिए आती है। लेकिन दूसरी मर्तबा जब बंदा रुखसत होता है तो इसकी जुदाई अब मशरूत होती है, यानी कंडीशनल ये जुदाई है, पता नहीं वापसी मुलाकात होगी या नहीं होगी। नेक अमाल हुए माँ बाप के औलाद के तो जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे, अगर किसी के एक के नेक अमाल ना हुए तो हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिए जाएंगे, कुछ जन्नत में चले जाएंगे और कुछ जहन्नम में चले जाएंगे। बाज़ औक़ात बच्चियां रुख्सत होकर किसी घर में जाती हैं और वहां उनको उनकी पसंद का घर नहीं मिलता बल्कि मुशक्कत उठानी पड़ती है। वो अपने मुकद्दरों को हर वक्त सोचती रहती है, बर्दाश्त करती है, दुखी रहती है और दिल दिल में बाज़ औक़ात यहां तक सोचती है कि मौत आएगी मेरी जान छुटेगी। लेकिन ये जो दूसरी रुख्सती है इसमें अगर इंसान जहन्नम के घर में चला जाए तो अब मौत से भी इसकी जान नहीं छूटती। ला तदउ यौम सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा, आज एक ही मौत को न पुकारो बहुत सी मौतों को पुकारो, वहां बार बार मौत आती रहेगी लेकिन फिर भी इंसान खत्म नहीं होगा। पहली रुख्सती के लिए वालिदैन जेहेज तैयार करते हैं और दूसरी बार रुख्सती के लिए इंसान को खुद आमाल तैयार करने पड़ते हैं। पहली रुख्सती के लिए इतना अरसा तैयारी करते हैं, यानी बच्ची पैदा हुई जिस घर में, जब बच्चा पैदा हुआ माँ बाप उसको शादी के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। बाद बच्चे ऐसे होते हैं वो शादी के लिए तैयार ही नहीं होते, माँ बाप इंतजार करते हैं, अच्छा भी बेटा है तुम्हारी जात ही नहीं है कैसे तुम्हारी शादी कर दें, तुमने किसी ढंग के प्रोफेशनल में एजुकेशन ही नहीं ली तुम्हारी कैसे शादी करें, क्या रिश्ता मांगने जाए आपके लिए कि भाई इसके लिए रिश्ता दे दो, वो क्या आगे से जवाब देंगे कि भाई किससे शादी करें। तो इसकी तैयारी जो है एक अरसा तक इंसान को करनी पड़ती है और दूसरी दफा जब मौत के लिए बंदा जाता है तो इसकी तैयारी के लिए भी अल्लाह ताला ने एक वक्त इंसान को ये जिंदगी का दिया हुआ है और इसमें भी नेक आमाल इकट्ठे करने पड़ते हैं। ये अल्लाह ताला का रहम है, करम है कि एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह ताला इतना बड़ा दरख्त पैदा कर देते हैं जन्नत में, यानी थोड़ी सी मेहनत करने से इतनी सारी तैयारी हो जाती है। हालांकि इस दुनिया के आदमी घर में रहने के लिए इंसान को मुकाबलतन ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो यूं कहा जा सकता है कि भाई जन्नत में जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने से इंसान को इतनी बड़ी जन्नत हासिल हो जाती है, यानी इस दुनिया में जन्नत हासिल करना कितना आसान है जबकि दुनिया में दुनिया को हासिल करना कितना मुश्किल काम है, उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक आदमी को अच्छा घर बनाने के लिए बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा खर्च करना पड़ता है और जन्नत का घर बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत से अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा घर दे देते हैं। अगर आज शोहर कहे बीवी को कि मैं आपको एक घर बना के देता हूं जो शहर से बाहर वीराने में बना हुआ है, आबादी भी नहीं है वहां पर, तो बिजली भी अभी नहीं पहुंची, पानी का इंतजाम भी नहीं है, यानी जो भी घर की सहूलियात होती है वो नहीं है वहां पर, तो साफ जाहिर है ऐसी जगह पर चोर और डाकू भी आ सकते हैं, तो लूट भी सकता है, तो औरत कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं इस घर में चली जाऊं, तो कहेगी ना भाई ना मैं तो इस घर में नहीं जाती, और इसके मुकाबले में अगर कोई बंदा अपनी बीवी से कहे कि मैं तो आपको शहर के अच्छे डिफेंस के इलाके में, कॉलोनी में, अच्छे एरिया में, जहाँ अच्छे खूबसूरत घर बने हुए हैं, वहां घर बना के दूंगा और वहां और भी इर्द गिर्द घर बने होंगे, अच्छे पड़ोसी होंगे, सहूलत भी होगी, बिजली पानी वगैरह सबके इंतजाम होंगे, तो औरत कहेगी मैं अभी जाने को तैयार हूँ, हम ऐसा घर बनाएंगे और जाने को तैयार। तो इसी तरह एक बंदा अगर बुरे आमाल करता है जिंदगी में तो मरने से पहले उसको अपना घर नजर आने लग जाता है, जो जहन्नम के गड्ढे में बना होता है, जहां तकलीफ और परेशानियां होती हैं, अब जिंदगी का हिस्सा वो गवां बैठा होता है, तो अब वहां जाते हुए घबराहट होती है, बंदा मरना नहीं चाहता, मौत के तसव्वुर से भी खौफ आता है। इसके मुकाबले में एक बंदे ने सारी जिंदगी नेक अमाल किए, जन्नत में अपना घर बना लिया और इसको अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद लग गई, ऐसे हाल में बंदे को जी चाहता है कि वहां चला जाओ। हम एक मरतबा अपने वालदा के साथ गाड़ी में ऐसे कहीं जा रहे थे, तो वो कहने लगी कि भाई मैंने अपने बच्चों के घर देख लिए, उनके शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब मेरा जी चाहता है कि मैं आखिरत का घर भी देखूं, वो घर कैसा होगा, अल्लाह से मुलाकात होगी, वहां नेक लोगों से मुलाकात होगी, तो उसको देखने एक फितरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। चुनाचे बीबी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आई और इस वजह से फिरौन जो है बहुत गुस्से में आ गया, उनको कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान न लेकर आए, लेकिन ये डटी रही, तो चुनाचे उसने सजा देने का फैसला कर लिया और उनको बेइज्जत कर अपने घर से भी निकाल दिया और अपने महल के सामने उनको अजियतनाक जो है बरहना करके, बेलिबास करके उनको शहीद किया गया। इस हाल में कि जब के बीवी के सामने फिरौन का वो महल था जिसमें वो मलका की हालत में रहा करती थी, मलका बनकर एक जिंदगी गुजारती थी और इंतहाई हसीन और जलील ये खातून थी, फिरौन ने इनको किस तरह से जब बेइज्जत किया और घर से निकाल दिया, इस सदमे की हालत में इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, रब इब्नी ली इंदा बैतन फिल जन्ना, फिरौन के घर की तरफ देखते हुए अपने रब को कहती है मेरे रब मेरे लिए जन्नत में अपने पड़ोस में घर बना दीजिए, फिरौन ने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया और मुझे यूं रुसवा किया, तो थी तो मैं मलका घर वाली थी, अब अल्लाह अपने पड़ोस में मुझे घर अता कर दीजिए। इनकी इस तरह अपनी मौत के आलम में दुआ मांगना अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद में भी कर दिया और साथ ही साथ न सिर्फ इनको जन्नत में घर अता किया बल्कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका घरवाला भी बना दिया। जब अम्मा खदीजा इस दुनिया से विसाल करने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मेरी पहली जो बीवी थी उसको भी मेरा सलाम कहना। तो हैरत ज़दा हुई कि मैं तो पहली बीवी हूँ, मुझसे पहले वाली बीवी कौन है? तो उन्होंने कहा कि बीवी आसिया जो फिरऔन की बीवी थी, अल्लाह ने उसका निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया है। तो अल्लाह ताला देखो कितना अच्छा बदला देते हैं। अगर तकाबुल करें तो दुनिया का घर आरजी है और आखिरत का घर दाइमी है, हमेशा हमेशा के लिए है। दुनिया का घर ईंट और गारे से बना हुआ है, शीट रॉक से बना हुआ है, और आखिरत का घर सिल्वर एंड गोल्ड से बना हुआ है। दुनिया के घर में इंसान को कामकाज खुद करना पड़ता है और आखिरत के घर के सारे काम खुद ब खुद ये कराए मिल जाते हैं। दुनिया के घर में रिस्क की कमी हो सकती है, कोई ना कोई शॉर्टेज तो हो ही सकती है, लेकिन आखिरत के घर में रिस्क की कमी का मसला ही नहीं होगा। दुनिया के घर में बंदा अपने घर वालों के साथ हमेशा नहीं रहता, किसी न किसी को पहले जाना पड़ता है, जुदाइयां हो जाती हैं, कोई ना कोई घर का बंदा फौत हो जाता है, उसको अपना घर पहले छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आखिरत के घर में हम पहुंच गए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर मियां बीवी को, बच्चों को एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए इकट्ठा कर देगा। दुनिया के घर में उम्र ढलती चली जाती है, इंसान बूढ़ा होकर चला जाता है, और आखिरत के घर में हमेशा बंदा जवान रहता है। दुनिया के घर में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ापा आता है और इंसान का हुसन जमाल खत्म होता चला जाता है, और अल्लाह की शान के जन्नत वाले घर में इंसान का हुसन जमाल में इजाफा होता चला जाता है। दुनिया में इंसान जो लिबास पहनता है बार बार उसी को धो धो कर पहनना पड़ता है, इसलिए हर घर में लॉन्ड्री लगी होती है, और आखिरत में बंदे को हमेशा नया लिबास मिलता है। कहा कि एक क्लोज़ेट भी होगी, उसमें लिबास जो है वो बन रहे होंगे, ग्रो करेंगे, बंदा उसको खोलेगा, अपनी पसंद का लिबास पहनेगा, फिर वो डिस्पोजिबल की तरह उसको खत्म, तो नया लिबास पहन लेगा। दुनिया में इंसान को ये डर होता है कि घर में रहने वाले दूसरे अजीज रिश्तेदार, खास तौर पर बीवी के लिए खावन, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, नाराज हो जाएगा, हो सकता है मुझे छोड़ भी दे और मेरा ये घर छूट जाए। लेकिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जन्नत अता फरमा देंगे तो साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि बंदो मैं तुम तो राजी हो गया और अब कभी भी नाराज नहीं होगा, यानी ये घर जो मैंने आपको दिया है ये हमेशा हमेशा अब आपका घर है। जन्नतियों को उस दिन बहुत खुशी होगी। तो अब देखो भाई, ऐसा घर हासिल करना चाहिए ना, इतना प्यारा है, अल्लाह ताला ने बनाया है, तो अब ये घर कैसे हासिल होगा? उलमा ने आसान सी बात बता दी कि एक इंसान की जिंदगी होती है जो मन चाही होती है कि मैं वो करूंगा जो मेरा जी चाहेगा। जैसे आज अक्सर लोग कहते हैं यू डू व्हाट यू लाइक टू डू, बंदा भी ये सोचता है आई विल डू व्हाट आई लाइक टू डू, क्या मतलब मन चाही जिंदगी गुजारूंगा, तो भाई डील कर लो, अगर इस घर तक पहुंचना है तो यू मत सोचो, बल्कि सौदा कर लो कि मैं मन चाही जिंदगी नहीं गुजारूंगा बल्कि रब चाही जिंदगी गुजारूंगा। हर काम में उसी तरह सोचते चले जाए, मेरा अल्लाह क्या चाहता है, थोड़ी सी जिंदगी है। अब देखो हम कहीं जॉब करते हैं, हम अपने टाइम को सेल कर देते हैं वहां पर। हम कहते हैं जी 8 घंटे हम काम करेंगे सुबह इतने बजे से इतने बजे तक। वहां हमारे एम्प्लॉयर बता देता है कि आपको ये काम करने हैं, तो हम अपने वक्त को वहां सेल कर देते हैं और बॉस की मर्जी से वक्त को गुजारते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी सारी जिंदगी को ही बेच दें अल्लाह के पास? कितनी बड़ी बात होगी कि अल्लाह हमारे इस वक्त को खरीद ले। ईमान वाले इतने खुश नसीब हैं, इतने खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खरीद लिया। किसी ने कहा कि तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे उसकी जिंदगी को खरीद कर ले और उसको दीन के काम पे लगा दें, नेकी वाले काम उससे करवाएं, इससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं हो सकता। और अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे की जिंदगी को खरीद नहीं कर सकते। और याद रखो कि जन्नत क्या चीज है और हम क्यों जन्नत में जाना चाहते हैं, इसलिए कि जन्नत जो है वो परवरदिगार के साथ मुलाकात गाह का दूसरा नाम है। जैसे कोई महबूब एक दूसरे से वापस करते हैं मुहिब और महबूब, और वो कहे जी फला जगह मिलेंगे, अब वहां पहुंचने के लिए कितनी तमन्ना होती है कि मैं किसी तरह वहां पहुंच जाऊं। तो बिल्कुल इसी तरह मोमिन सारी जिंदगी अल्लाह ताला से मोहब्बत करता रहता है, उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत की दीवानगी होती है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दुहु मिल्ला, अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों दे आर इंटॉक्सिकेटेड विद द लव ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। कितनी मोहब्बत होती है इनको, इतनी अल्लाह से मोहब्बत होती है। और इनको बता दिया गया कि अगर तुम चाहते हो अपने रब को देखो, मुलाकात करो, तो फिर हम जन्नत में मिलेंगे। वाह वाह, क्या जबरदस्त जगह अल्लाह ने बनाई है मुलाकात की। तो ये जन्नत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीदार की जगह है, इसलिए मोमिन को जन्नत का तलबगार होना चाहिए। अच्छा, हमने ये देखा कि जब बंदा शादी करता है तो वो कहता है कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा, अपने घर को सजाऊंगा बनाऊंगा, जिसमें दुल्हन आती है उसको भी खूब सजाया जाता है, कुछ लोग वहां पर फूल लगाते हैं, कुछ लोग वहां पर अच्छे अच्छे परफ्यूम छिड़कते हैं, उस कमरे के जगह को रंग खास तौर पे किया जाता है। कहते हैं कि जी ये दूल्हा दुल्हन का कमरा है, हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उस कमरे को सजाता है या उस घर को बनाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन में रहना होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्योंकि अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला ने भी बंदों की मुलाकात के लिए जन्नत को बनाया है, अल्लाह ने उसको भी खूब सजाया है जी। मा ला अइनुन रअत, किसी आंख ने देखा नहीं, उज़ुनुन सलिअत, किसी कान ने उसकी तारीफ सुनी नहीं है। वला खतर अला कल्बिन बशरिन, किसी दिल पर उसका ख्याल गुजरा नहीं है। ऐसी हसीन जन्नत अल्लाह ने बनाई है अपने दीदार गाह को, अपने मुलाकात गाह को, जहाँ महबूब और मुहिब की मुलाकात होगी। تو کتنی خوبصورت جگہ ہوگی. اللہ جمیل و یحب الجمال, جس پروردگار نے آسمان کو ستاروں سے چمکتا ہوا اتنا خوبصورت بنا دیا, جس نے اتنے پیارے پیارے نظارے بنائے, جس نے اتنا حسن بنایا, اس پروردگار نے جنت کو کتنا پیارا بنایا ہوگا. ہر انسان اپنے حیثیت کے مطابق, اپنے مال جتنا اس کے پاس ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنے گھر پہ مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا محبوب اس میں رہے. اللہ رب العزت کے پاس تو خزانوں کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو پھر کتنا خوبصورت بنایا ہوگا, کتنا سجایا ہوگا. اللہ اللہ, یہ جو ملاقات ہوتی ہے شادی کی, پہلی رات ہوتی ہے, پہلی ملاقات ہوتی ہے, یہ بڑی یادگار ہوتی ہے. اس لیے اس کو خوب جو ہے اہتمام سے سجایا جاتا ہے. دوست رشتے دار بھی اس سے مدد کرتے ہیں, انسان خود بھی چاہتا ہے کہ میری یہ پہلی ملاقات بہت ہی اچھی ہو, اور اللہ تعالیٰ کو بھی بندوں کی یہ پہلی ملاقات بڑی محبوب ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور ان کی یہ پہلی ملاقات کی اپنے پروردگار سے ہم کلامی ہوئی. اب کوہ طور تو ایک پہاڑی تھا, لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ پوری قسم کھا کے کہا اس پہاڑ کی, یعنی اس ملاقات کی جو موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. کوہ طور اللہ کو اتنی پیاری تو لگی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی کا موقع ہوتا ہے تو دعوت بھی دی جاتی ہے کہ بھئی آپ آئیں ہماری شادی میں آئیں, جب تو ملاقات کی آتے ہیں. اللہ رب العزت کو بھی جو ہے اس ملاقات کا شوق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی دعوت دی, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اے میرے بندو آؤ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف, ہم تمہیں معاف کر دیں گے. آؤ, وجنت الارض السماوات والارض, اور جنت کی طرف جو زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے, اتنی بڑی جنت ہے, آؤ اس ملاقات کی طرف آؤ. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ دعوت دیتے ہیں اس سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں سارے اس سلامتی والے گھر میں آ جائیں. اللہ نے ہمیں بنایا ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اس جنت کو حاصل کر لیں. آپ دیکھو ایک دستور ہوتا ہے کہ جب تو بندہ جاتا ہے تو وہ ہدیہ بھی لے کے جاتا ہے, خالی ہاتھ تھوڑی جاتے ہیں. تو رب کی ملاقات کے لیے کون سا ہدیہ لے کر جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون, اے میرے بندو تمہارا مال اس دن کام نہیں آئے گا, یہ ہدیہ مت لانا میرے پاس. ولا بنون, اور نہ تمہاری اولادیں تمہاری کھلاڑیاں کام آئیں گی. الا من اتى الله بقلب سليم, ہاتھ بنا ہوا سمرا ہوا دل میرے پاس لے کر آنا. بہت سلام صدور, اس کو ہم کہیں گے کہ کیسا تم نے دل بنایا جو اللہ کی یادوں میں دھڑکتا تھا. اے اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھا گیا کہ جب ایسی کوئی ملاقات, ایسی کوئی شادی کی تقریب ہوتی ہے, انسان نہیں چاہتا کہ کوئی انوانٹیڈ کوئی وہاں آ جائے, ان انوائٹیڈ کوئی وہاں آ جائے. بعض اوقات مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں, ایسے دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں, الٹے سیدھا گانے بجانے والے بھی آ جاتے ہیں. نیک لوگ نہیں چاہتے کہ وہ وہاں آئیں. اسی طرح वो क्या करते हैं कि वहां पर कुछ बंदों को ड्यूटी दे देते हैं कि भाई जरा सिक्योरिटी पे रहना, चेक करते रहना, कहीं कोई गड़बड़ किस्म का ना अंदर घुस जाए। बाल दफा चोर चिकारी करने वाले भी आ जाते हैं, ऐसे ही खामखा रोटी खाने वाले भी आ जाते हैं बाल दुकान। तो वो कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी पे बंदे खड़े हो ताकि कोई अनवांटेड वहां ना दाखिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक्ज़ियन थुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना तक़ौ। तुम में से जो कोई भी है इसको पुल सरात से गुजरना पड़ेगा। ये तेरे रब के नजदीक हतमी और फैसला शुदा बात है। फिर हम निजात देंगे उनको जो मुत्तकी होंगे, परहेजगारी की जिंदगी गुजारते होंगे, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है, वही उन्हीं को दोस्त बनाता है, मुत्तकी लोगों को। आज इंटरनेट की बीमारियां और वेद नजरी की बीमारियां आम हो गई है, और अगर हम इस सुलसराह में गुजरना है तो फिर अगर इंटरनेट पे बैठे हुए गंदी चीजें देखेंगे तो फिर वहां पाँव लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, कुछ लोग कट कट के वहां से नीचे गिरेंगे, जहन्नम में चले जाएंगे। और जिन्होंने यहाँ पर इस्तकामत के साथ मजबूती के साथ वक्त गुजारा होगा कि उन्होंने इधर उधर वो चीजें नहीं देखी होंगी जो अल्लाह ताला ने नापसंद की हुई है, तो इनके पाँव वहां जमे हुए होंगे, ये बिजली की तरह उस पुल सराब से गुजर जाएंगे। जब ये वहां से गुजरेंगे तो अल्लाह ताला रिसेप्शन पर इस्तकबालिया पे लोगों को मुतायन वहां पर खड़ा कर देंगे, तयन कर देंगे। शादी के अंदर रिसेप्शन डेस्क बना होता है, कुछ खास दोस्तों को बंदा कहता है कि आप दरवाजे के ऊपर खड़े रहे, हर आने वाले को ग्रीट करें, सलाम करें कि आइए आइए तशरीफ लाइए। इसको प्रोटोकॉल कहते हैं, तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, आए जी आए माशाल्लाह, हैंडशेक किया, आप आए इधर इस कुर्सी पे बैठे, उस कुर्सी पे बैठे, कुछ लोगों को सोफों पर बिठाया जाता है, किसी को आगे किसी को पीछे, आप इधर चले जाए आप उधर चले जाए। तो ये प्रोटोकॉल होता है और इसको वहां पर जो है रिसेप्शन पर किया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं वसीकल लजीन तकौ रब्बहुम इलल जन्नती जुमरा। जो मुत्तकी लोग होंगे इनको जन्नत की तरफ बाजमात ले लेकर जाएंगे, प्रोटोकॉल से ले जाएंगे, मुत्तकी लोग होंगे ना। इसको बड़ी अच्छे तरीके से यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर्रहमानी वफदा, जिस दिन हम मुत्तकीन को रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे, सुभान अल्लाह। और जो अल्लाह ताला ने वहां इस्तकबालिया में खड़े किए हुए हैं, बल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाबिन सलामुन अलैकुम। हर दरवाजे से फरिश्ते उनकी तरफ आएंगे, उनको कहेंगे तुम पर सलामती हो, फिमा सबर तुम फनेमा उकबद्दार, जो तुमने दुनिया में सबर किया बस तुम्हें आखरत में कितना अच्छा घर मिलेगा। मलाइका कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो और शाबाश, खुश रहो, जीते रहो, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। वाह वाह क्या अच्छी आवाज आएगी, ये कितना जी खुश होगा कि तुम कितनी प्यारी जिंदगी गुजार के आए हो, आज तुम्हें सलामती सलामती की बात कही जा रही है। इस हदीस मुबारक में आता है हर जन्नती मर्द औरत जब जन्नत में दाखिल होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मोमन मर्द और मोमिना औरत को खुद सलाम फरमाएंगे, सलाम सलाम सलामती के घर की तरफ बुलाया जाता है। यदऊ इला दारु सलाम, अल्लाह यदऊ इला दारु सलाम। अल्लाह ताला सलामती वाले घर में बुलाएंगे और मेहमान आ जाएंगे। जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर उनकी खिदमत की जाती है। तो सबसे पहले आमतौर पर रिवाज है कि कोई ना कोई एपिटाइजर खिलाया जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी वहां पर एक एपिटाइजर केक की शक्ल में यानी रोटी पर नाम बताया कि रोटी खिलाई जाएगी और सुभान अल्लाह ऐसी जबरदस्त रोटी होगी कि दुनिया में इंसान ने जितने मजे चखे होंगे सारे के सारे उसे एक लुकमे में मिल जाएंगे, उस एपिटाइजर में मिल जाएंगे सारे मजे एक एपिटाइजर में अल्लाह ताला चखा देंगे। तो मेरे बंदे सारी दुनिया में मेहनत करता रहा तो तेरा एक लुकमा ही जो है ना सारे मजे चखा दिए है। अब दुनिया में आमतौर पे जो मेहमान नवाजी करते हैं वो क्या करते हैं, कुछ खाने बनवा देते हैं, बफे की शक्ल में लगा देते हैं कि पता नहीं किसको कौन सा पसंद होगा और कैसा वो खाना चाहेगा, लिहाजा अपनी चॉइस के मुताबिक वो खाना खा लेगा। अब कोई बफे में 10 खाने, कोई 20 खाने, कोई 100 खाने लगाता है जी। लेकिन दुनिया के खानों की फिर भी एक इंतहा होती है, कितने खाने लगाएंगे। हमने देखा हज पे, हज जब जाता है पता नहीं 100-200 डिशेज लगी होती है, फिर भी मैं कहता यार मेरी चॉइस की चीज नहीं है, लोग फिर भी ढूंढ रहे थे यार मैंने तो ज्यादा नहीं खा सके, चूज नहीं कर सका। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا, جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا, نُزُلًا مِّن غُفُورٍ رَّحِيمٍ, یہ ایک غفور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے, واہ فرمان ہے, ऐसे घर जाने को जी चाहता है। तो ये वो घर है जो सोने और चांदी की ईंटों से बना है, मुश्क इसकी खुशबू है जिससे इसका सीमेंट बना हुआ है, और जो है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सुर्ख याकूत के बने हुए घर मिलेंगे। गौर हदीस मुबारक में आता है जो अल्लाह शिराह में जान कुर्बान करेगा, मेहनत करेगा, अल्लाह उसको बेजोड़ मोती का घर अता फरमाएंगे। जैसे यूं समझेंगे क्रिस्टल का बना हुआ घर होगा, जहाँ शीशे लगते हैं उनको आपस में जोड़ना पड़ता है, वहां बेजोड़ उसमें बीच में कोई भी क्रैक ही नहीं होगा। इंसान कभी चाहता है कि घर तो मिला लेकिन घर वाले भी तो होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए जन्नतियों को शफात का भी हक दे दिया है, बख्शने वाले तो अल्लाह ताला है। और बंदे का जी चाहता है भी मेरे घर वाले हों, मेरे माँ बाप हों, मेरी औलाद हो, मैं उनके साथ रहूंगा तो मजा आएगा। अल्लाह ने इसलिए शफात का भी उसको हक अदा कर दिया कि तुम अपने अजीज व कारब वो जो जहन्नम में चले गए उनकी मुलाकात चाहते हो, चलो उनकी सिफारिश करो। लिहाजा एक हाफिज कुरान होगा, अल्लाह उसको 10 बंदों की शिफात की इजाजत दे देंगे। वो अपनी चॉइस से जिन लोगों को अपने साथ रखना चाहेगा 10 बंदों को वो चूज कर लेगा कि भाई ये मेरे साथ रहे। हम तो अजीज कारब होते हैं जिनको बंदा पसंद करता है, जिन्होंने मदद की होती है। किसी का आलम दीन होगा उसको 400 बंदों की शिफात का हक हासिल होगा कि वो अपने साथ उनको मिला लेगा। तो इंसान इस तरह अपने साथियों को, अपने अजीजों कारब को वो अपने साथ करेंगे। वल्लदीन आमनु, वो लोग जो ईमान ले आए, वत्तबअतुहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमान, और उनकी औलाद जो उनके साथ ईमान लेकर आई है, उनकी तरह जैसे माँ बाप ईमान वाले थे बच्चों ने भी सौदा कर लिया कि भी ईमान वाले बनेंगे, ये काम करेंगे, الحق نام وما ألتناهم من عملهم من شيء. فرمایا ان کی اولادوں کو بھی ہم ان سے میلاد دیں گے اور ان کے عملوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ نے نیک اعمال کیے اب ان کی اولاد کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تو ان کو ان کے اعمال سے کچھ لے لیا جائے, نہیں, ان کو بھی اٹھا کر کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ایک اور جگہ فرمایا المرء ما من احبها, بندہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ملا دیتا ہے. اللہ کرے ہمیں اپنے شیخ کے ساتھ اللہ ملا دے. ہم اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے, اللہ نے اس کے ساتھ ملائے رکھے, اور ہمارے شیخ اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ملیں گے اور وہ ان کے ساتھ کرتے کرتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا پڑیں گے. حضرت ابو بکر تو پہلے ہی پہلو میں سو رہے ہیں. ہم بھی یہی امیدیں لگاتے ہیں یہ سلسلہ لیا نقش بندیہ بلا آخر ہمیں اس طرح سلسلے سے جوڑتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑے گا, اور وہ تو پہلے ہی آقا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم جا ملیں گے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ ہمیں ملا دے. اللہ رب العزت نے جنت کی مٹی کو کستوری سے بنایا ہوا ہے, ایک خوشبو ہے. جنت کی چھتوں کے اوپر بھی بیوٹیفل وہ نقش نگار کہتے ہیں پھول بنے ہوتے ہیں, ڈیکوریشن ہوتی ہے, اور اس طرح سے ان گھروں کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آسمان پر ستارے جیسے چمکتے ہیں, اس طرح سے یہ نظر آتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب العزت نے مومن کو جنت میں ایسا گھر عطا فرمائیں گے جو دور سے دیکھنے والوں کو اس طرح سے چمکتا ہوا نظر آئے گا جیسے زمین پہ رہنے والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر پھول بھی بنائے ہیں, خوشبو بھی بنائی ہے, گلشن بھی ہے, ایسا پیارا منظر ہے کہ سبحان اللہ بندے کو یہ نظر آئے گا. دنیا کے گھر میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک بار جتنا بھی خوبصورت گھر لے لے کچھ ہفتے کے بعد سے میں یوز ہو جاتا ہے. آپ جو بیڈ روم ہے وہ بیڈ روم ہے, جہاں ہے وہ وہیں پر ہی ہے, مطلب اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا, ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا, بیڈ روم کو بڑا نہیں کر سکتا, یعنی کوئی نئے راستے نہیں بنا سکتا. کچن جو بن گیا وہ بن گیا, آپ اندر روز تھوڑی اس کو تبدیل کرے گا. اللہ رب العزت نے جنت کا مکان ایسا بنایا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے اس مکان کے ڈیزائن کو بدلتا رہے گا. یعنی کمرہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے ادھر کر دیا, اس کی تبدیلیاں بندہ خود ہی اپنی مرضی سے کرے گا. پھر اس کے اندر جو رکھی ہوئی چیزیں ہوں گی ان کی سیٹنگ بھی بندہ بدلتا رہے گا. عورتوں کو دیکھا اکثر, وہ کبھی پردوں کو تبدیل کر دیتی ہیں, کبھی گھر کے صوفے پڑے ہوتے ہیں ایک طرف تو اٹھا کے اس کو تبدیل کر کے دوسری طرف رکھ دیتی ہیں. حافظ آ کے پوچھتے ہیں کیا چل دیا, ترتیب ساری بدل کے رکھ لی. تو وہ کہتی ہے ایک جیسی سیٹنگ سے تنگ آ گئی تھی, اب میں نے کہا سیٹنگ بدل کے رکھ لوں. تو سیٹنگ کو صرف انہیں کے صوفے کی اور ٹیبلوں کی جو ہے تبدیلی سے ہی انسان کو وہ گھر ڈفرینٹ لگنے لگتا ہے. تو جنت میں بھی اسی طرح انسان اپنی مرضی سے کہے گا کہ یہ ادھر ہو جائے وہ ادھر ہو جائے. جنت کے اندر اللہ نے باغات بنائے ہیں, بندے کا جی چاہتا ہے کہ میرا اتنے ایکڑ کا گھر ہو, اتنے ایکڑ کا گھر ہو, تاکہ جہاں گھر کی رہائش ہے وہاں گھر کے باغ بھی نظر آنے چاہیے, پھول بھی نظر آنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فیلڈ ہاؤس بھی دیا ہوگا, اور ہر گھر کے اندر ایک باغ ہوگا और उस बाग के ऊपर, उस बाग के अंदर दरख्त लगे होंगे और उन दरख्तों पर फल लगे होंगे। उतूबी ही मुतशाबिहा, और ये फ्रूट जो है मुतशाबे होंगे, सिमिलर होंगे दुनिया के फ्रूट के साथ, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, अनार, लेकिन टेस्ट में ये आला होंगे, शक्ल में भी उम्दा होंगे। और जन्नती जन्नत के दरख्त का फल लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, घर के हर हिस्से में ये खा सकेगा। ख्वाहिश करेगा कि मैं ये फल खाऊं, तो वो दरख्त ही उसकी तरफ झुकता चला जाएगा और फल उसके करीब आ जाएगा और वो आराम से उसको ले लेगा। उसके लिए उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, दरख्त पर चढ़ना नहीं पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए और उसको ढूंढने के लिए कि पका हुआ फल कौन सा है, मीठा कौन सा है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि खुद ब खुद चलता चला आएगा। और एक अजीब बात, बजुन्निलक कुतूफुहा तज़लीला, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस घर के, इस दरख्त के पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा देंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा देंगे, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के कलामात लिखे होंगे। बाज़ुकात किसी फल के अंदर से ऐसा लिखा हुआ निकलता है, लोग कितने खुश होते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, देखो मैंने फल काटा, उसके अंदर देखो अल्लाह लिखा हुआ था। सुभानअल्लाह, जन्नत में इस तरह से होंगे कि उस पे तस्वीर लिखी होगी, फीहिमा मिन कुल्ली फातिहतिन ज़ौजा, और इन दोनों में हर फल के दो जोड़े होंगे, फीहिमा ऐनान तजरियान, इन्हीं दो बागों में दो चश्मे बह रहे होंगे, फीहिमा ऐनान नफ़ाहतान, इन्हीं में दो उबलते चश्मे होंगे, फीहिमा फाकिहतान व नख़लुन व रुम्मान, इन्हीं में मेवे खजूर अनार होंगे, मुदहामतान, दोनों सर्दे की कसरत से स्याही की तरफ माइल होंगे, यानी बोथ ग्रीन, वजनल जन्न तैनी दान, और दोनों बागों के फल झुके पड़े होंगे, फदी आला रब्बी को मात कर देगा। अल्लाह की किन किन नियमतों को हम जटलाते फिरेंगे, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंदर भी इतनी नियमतें दी इंसान शुमार नहीं कर सकता, और आखिरत की नियमतें इतनी बनाई है कि इंसान सोच ही नहीं सकता। हवा चलेगी, दरख्त के पत्ते हिलेंगे और ऐसी प्यारी प्यारी आवाज उसमें से आएगी। बाज़ुकात गर्मी के मौसम में सुबह सुबह हल्की हल्की हवा चलती है, दरख्त हिल रहे होते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी आवाज आती है, जन्नत की ये मौसीकी होगी। जन्नत में शहद की नहरें होंगी, पानी की नहरें होंगी, शराब तहूर होगी, दूध की नहरें होंगी, और इनकी नहरों के किनारों पर खेमे लगे होंगे, रेशम के बिछौने होंगे, तकिए होंगे, तख्त बने होंगे, इंसान आराम से बैठा हुआ अपनी जन्नत का नजारा कर रहा होगा। नहर रहमत होगी, जैसे स्विमिंग पूल होता है इंसान के घर के साथ, उसका नाम नहर रहमत होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत के दर्जात बनाए हैं, दारुल जलाल, दारुल सलाम, जन्नतुल मक्वा, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल नईम, जन्नतुल करार, और जन्नतुल फिरदौस, और फिर आखिर में जन्नतुल अदन। और ये वो जन्नत है जो अल्लाह ताला ने खुद बनाई है। दूसरी जन्नतें फरिश्तों से बनवाई, लेकिन ये जन्नत खास खुद बनाई, क्योंकि असल में ये है वो मुलाकात का। जन्नतों में ये वो जगह है जिसमें महबूब की मुलाकात नसीब होगी। और इसका बड़ा अजीब ही नजारा है कि किस तरह जन्नतों को दावत मिलेगी और जन्नती वहां जाएंगे, फिर यहाँ पर एक महफिल सजेगी और उस महफिल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान मजीद पढ़ेंगे, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ेंगे और फिर अल्लाह ताला खुद सूरह रहमान पढ़ेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन पढ़ेंगे, तो इंसान मदहोश हो जाएगा, हैरान हो जाएगा, इतना लुत्फ आएगा, इसमें खिलाया पिलाया भी जाएगा, खास पोशाक भी पहनाई जाएगी। सिर्फ इतनी सी एक बात बता के आप अंदाजा लगा लें, जब जन्नत में दाखिल होगा तो वो पहली मरतबा जब अपने खादमों को देखेगा वो शुभा कर बैठेगा कि इतना हसीन और जमील तो शायद खुदा ही हो सकता है, और वो उसके सामने झुक जाएगा, सजदा करने लगेगा। तो उसके खादम उसको कहेंगे, ऐ जन्नती, अल्लाह का तुझ पे सलाम हो, हम तो तेरे खादम हैं और तू हमारे सामने क्यों झुक रहा है, तू क्यों खिदमत हमारे सामने क्यों सजदा कर रहा है, अल्लाह ने तेरे लिए सब कुछ बनाया और हमें भी तेरी खिदमत में मामूर किया हुआ है। और जब बंदा इस जन्नत अदन में जाएगा और जब यहाँ से लौट के वापस अपनी जन्नत में आएगा तो इसका हुसन इतना बढ़ जाएगा कि इसके खुदा उसके सामने सजदा करने लगे, इसके सामने गिरने लग जाएंगे और वो हैरतजदा हो जाएंगे, इतना हुसन भी होता है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को बहुत हसीन बनाया है, हर बंदे को अल्लाह ताला ने बहुत हसीन बनाया है। हम इसको खराब करते हैं बुरे आमाल के साथ, बंदे काम करके अपने हुसन को हम बर्बाद कर देते हैं। आज यहीं तक का सबक, अल्लाह ने चाहा इसी मजमून को जिंदगी बाकी तो आइंदा जुमा चलाएंगे। वाह, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।